शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता में भगवान ने अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है ऐसा अर्जुन को अध्याय 8 में भगवान ने बताया। उस पर हम विचार करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ईश्वर की कृपा से ये शरीर हमें अपना उद्धार करने के लिए प्राप्त हुआ है। सभी शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा बतलाई गई है। मानस में तो आता है बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सिधारा, ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक में दुख पाता है। सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछताई कालहीं कर्महीं ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। वो सिर पीट पीट कर पछताता है और तथा अपना दोष न समझकर काल पर कालहीं कर्महीं ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। या तो काल पर दोष लगाता है, कर्म पर लगाता है, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता रहता है। मानस में आता है नर तन सम नहीं कब नहीं देही जीव चराचर जाचत ते ही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। नर तन सम नहीं कब नहीं देही जीव चराचर जाचत ते ही। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा केवल विषय भोगों की प्राप्ति में ही लगा रहता है वे अपने आप को अधोगति में ही डालता है। कठोपनिषद में आता है कि स्वयं प्रकट होने वाला परमात्मा ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं। इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता, मतलब अंतर्मुखी नहीं होता। किसी बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाहर के विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा है। वेदों में सुख के दो साधन बताए हैं, श्रेय अर्थात कल्याण का कारण और प्रिय अर्थात प्रिय लगने वाले भोगों का साधन। भगवान की कृपा से जो मनुष्य श्रेय को अपना लेता है वह दुखों से छूटकर परमात्मा को प्राप्त होकर अपना कल्याण कर लेता है। परंतु जो मनुष्य प्रिय अर्थात सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से किए हुए 7 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न यही पूछा कि युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इस पर भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में कहा कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान कहते हैं कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भासित रहा है। कठोपनिषद में भी यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रों आदि के श्रवण द्वारा जिसका जैसा अंतिम समय में भाव होता है उन्हीं के अनुसार जीवात्मा दूसरे शरीर को धारण करता है। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं, वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष लता तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है। इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में दिए हुए अजामिल और राजश्री भरत का शरीर त्याग करते समय आए हुए चिंतन या भाव पर विचार करते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से अजामिल के विषय में कहते हैं कि उसने अपने जीवन में अनेकों पाप किए थे। चोरी करना और दूसरे प्राणियों को कष्ट पहुंचाना ही उसका कार्य था। उसके छोटे पुत्र का नाम नारायण था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया और उसने अत्यंत भयानक 3 यमदूत देखे तब भी अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण, जो कि उसके छोटे बेटे का नाम था और वह पास में ही था। भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, तब वे वहाँ आ गए। जब यमदूत अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे तब यमदूतों और भगवान के पार्षदों के बीच संवाद हुआ। यमदूतों ने कहा कि इसका सारा जीवन ही पाप में है, इसने अनेक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है, अतः हम इसे यमराज के पास ले जाएंगे, वहाँ ये अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के नाम का उच्चारण तो किया है। इसलिए यमदूतो तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इतने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अवश्य पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान के पार्षदों के सत्संग के बाद अजामिल को संसार से वैराग्य हो गया। बाद में हरिद्वार में गंगा तट पर अजामिल ने आत्मचिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान के पार्षदों के साथ वैकुंठ को चले गए। अजामिल के विपरीत दूसरा दृष्टांत महाराज भरत का है, जो बड़े ही भगवत भक्त और तपस्वी थे। इन्हीं के समय से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ, जो कि पहले अजनाब वर्ष था। एक बार राजर्षि भरत ने नदी के किनारे पर देखा कि हिरणी का छोटा सा बच्चा नदी के प्रभाव में बह रहा है। वह उसे लेकर अपने आश्रम पर आ गए। उसका पालन पोषण करते रहने के कारण उनकी उसमें ममता हो गई और उनका अधिकांश समय उस हिरणी के बच्चे के साथ व्यतीत होने लगा। जब उनका अंतिम समय आया उस समय भी हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था और राजश्री भरत का भी चित्त भी उसी में लग रहा था। इसी प्रकार की आसक्ति में ही उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। इस प्रकार मृग बने रहे हुए भरत के अंदर वैराग्य भावना जागृत हुई और अंत में उन्होंने समय आने पर मृग शरीर को छोड़ दिया और अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा असंग भाव से गुप्त रूप से विचरते रहे, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रही। इसलिए अंतकाल के भाव के अनुसार अजामिल का उद्धार हो गया और राजश्री भरत को मृग शरीर में आना पड़ा। अजामिल के दृष्टांत से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अपना पूरा जीवन विषय भोगों और पाप कर्म में लगाकर ये सोच लें कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेकर मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने गीता के उपरोक्त श्लोकों में कहा है कि मनुष्य सदा जिस भाव से या कर्म से अपने जीवन में भासित रहा है अंतकाल के समय उसी का स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों का प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। अतः हमारे अंदर मौजूद ये गुण ही हमारे वर्तमान शरीर और भविष्य के शरीर की उत्पत्ति के कारण हैं। भागवत में भी भगवान ने कहा है कि जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उसके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। अतः अंतकाल में भी मनुष्य वैसा ही चिंतन करता है जैसे उसके अंदर गुणों की प्रधानता है और उसने कर्म किए हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं श्लोक 20 और 21 में कि सकाम कर्मों को करने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसे पुरुष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। और 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। अर्थात इस शरीर को दुखों का घर और क्षणभंगुर कहा है, जिसमें हम सुख खोजते हैं और सदा इसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको भगवान ने दुखों का घर कहा है और क्षणभंगुर कहा है। तो मनुष्य का अंतकाल कब आएगा इसके विषय में तो कोई भी नहीं जानता। ये किसी भी आयु में किसी भी समय आ सकता है। कभी कभी कम उम्र के बच्चों को या नवयुवक को भी मृत्यु को हम देखते हैं। अतः मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कोई भी समय उसका अंत समय हो सकता है। इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि हमें उस समय भगवान की स्मृति आ जाए? तो भगवान ने इस विषय में भी गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मनुष्यैः युध्यते वैरपति मनोबुद्धि मावेशी संशय। हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन का कर्तव्य कर्म युद्ध करना था, इसलिए भगवान ने कहा युद्ध भी मेरा निरंतर स्मरण करता हुआ कर। इसी प्रकार हम भी अपना अपना कर्तव्य कर्म भी करते रहें और उसी के साथ कर्म का आरंभ भगवान को स्मरण करते हुए करें और अंत में भी भगवान के स्मरण के साथ उस कर्म को पूर्ण कर दें। यदि प्रत्येक कर्म के आरंभ और अंत में भगवान का स्मरण करेंगे तब कर्म के मध्य में भी स्मरण न करते हुए भी वही भाव बना रहेगा। जैसे सोने के पूर्व भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम सो जाएं और जागने पर पहले भगवान का ही स्मरण करके बिस्तर से उठें तब नींद में भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी, एवं यदि नींद में अंत समय आ गया तब अंतिम चिंतन भगवान का ही रहेगा। इस प्रकार हम अपने मन द्वारा विषयों को सतत चिंतन न करते हुए अपने मन से बीच बीच में भगवान का चिंतन करने लगेंगे तब धीरे धीरे अभ्यास द्वारा हम उसे बढ़ा सकते हैं और कुछ समय के पश्चात वह स्वयं ही होने लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मनुष्य को अपने विवेक द्वारा इस पर विचार करना चाहिए और भगवान द्वारा गीता में बतलाए गए मार्ग पर चलते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।